मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 17 जुलाई 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है जय प्रताप सिंह, आप आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं पिछले दो दिनों से जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं उसी पर बात करके इसे समाप्त करना चाहूंगा। और आज का मेरा विषय होगा कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं और इसी में आप दूसरे जो रीजनल मीडियम वाले हैं वो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए क्या क्या करें। जहां तक कल के समाचारों का सवाल है, कोई खास ऐसी मुख्य घटना और समाचार मुझे जानने को नहीं मिली जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे भी, और वैसे भी अगर होता तो हमें टालना ही पड़ता। बस एक तथ्य आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सरकार ने कहा है कि वो 2025 तक देश को तपेदिक से मुक्त कर देगी। देखिए, हेल्थ जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तपेदिक से मुक्त होना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कितने लंबे समय से अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे, पुराने साहित्य पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे और यहां तक कि पुराने लोगों के बारे में जब जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में, तो बहुत से ऐसे महान कलाकार हुए, लोग हुए हैं, राइटर हुए हैं, आप कह लीजिए वैज्ञानिक हुए हैं, जिनकी केवल तपेदिक के कारण मृत्यु हो गई। तो भारत ने एक टारगेट फिक्स किया है और चूंकि 2025 तक की बात है तो आप यूं कह लीजिए कि ये लंबे समय तक ये जो आंकड़ा है, ये जो तथ्य है, आपकी मदद करता रहेगा। तो इसे आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम हिंदी वालों की बात करते हैं कि हम हिंदी वालों को क्या करना चाहिए। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि जब मैं कहता हूं हिंदी वाले क्या करें या रीजनल लैंग्वेज वाले क्या करें, तो प्लीज आप मुझे अंग्रेजी का विरोधी मत समझ लीजिएगा। नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं और न मेरी बात में आपको कहीं इस बात का एहसास हुआ होगा कि मैं अंग्रेजी का विरोध कर रहा हूं। अगर आज सिविल सर्विस में अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं तो ये उनकी कुछ विशिष्टता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी उनको कोई फेवर अतिरिक्त रूप से कर रहा है, चाहे वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए लोग हों, चाहे सरकार के नीति निर्धारक हों, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे जो मीडियम वाले हैं उनसे बेहतर सिद्ध कर रहे हैं। तो अब हमारे सामने जो चैलेंज है, यानी कि जो हिंदी और रीजनल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट के सामने चैलेंज है, वो ये है कि कैसे वे अपने आप को अपग्रेड करते हुए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तक लेकर आए, यानी कि उन्हें अपने अपने को अपग्रेड करने की जरूरत है। तो दोस्तों, जब इसके बारे में हम सोचते हैं तो देखिए, इसके बिल्कुल स्पष्ट रूप से दो पक्ष दिखाई देते हैं। एक पक्ष अनुवाद का है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके अनुवाद होने का है। इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी बात की है, लेकिन चूंकि इसके बारे में तो यूपीएससी और सरकार को निर्णय लेना है तो आप हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जरूर हम अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत जरूर करा सकते हैं और हमें कराना भी चाहिए। तभी सरकार को पता लगेगा, नीति निर्धारकों को पता लगेगा, यूपीएससी को पता लगेगा कि वास्तव में ऐसी कोई समस्या है। अदरवाइज तो फिर अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो उन्हें भी कुछ ज्ञान नहीं होगा और हम बेवजह के उनको इसके लिए दोषी पाते रहेंगे। दोस्तों, अब मैं दूसरे मुख्य विषय पर आता हूं और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा निदा फाजली साहब की दो पंक्तियों से। दो बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां हैं, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपने घर के साजों को सजाया जाए। इसका मतलब है कि हमारी जो अभी समस्याएं हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, इनको लेकर के कहीं दूसरी जगह जाने और गाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, अपने बिखरे हुए साजों को सजाया जाए। कि हमारे घर में जो चीजें बिखर गई हैं, जो इधर उधर उलट पलट हो गई हैं, अस्त व्यस्त हो गई हैं, बेहतर है कि हम उनको ठीक ठाक करें। इसका मतलब है कि हम अपना बहुत ही तार्किक तरीके से, निर्ममता के साथ, तटस्थता पूर्वक मूल्यांकन करें और उन कमजोरियों को जानने की कोशिश करें कि हम क्यों पिछड़ रहे हैं और एक बार जब हम अपनी वीकनेसेस को जान लेंगे तो उसका जो सेकेंड स्टेप होगा वो ये होगा कि हम कैसे अब अपने आप को बेहतर बनाएं। और जैसे ही हम इन कमजोरियों को जान करके और उन कमजोरियों पर काम करना शुरू कर देंगे, वो कमजोरियां गायब होनी शुरू हो जाएंगी, बल्कि यूं कह लीजिए कि हमारी शक्ति में तब्दील होने लगेंगी। और फिर आप भी, हम भी, हर कोई दूसरी भाषा के समान, अभी अगर अंग्रेजी की बात करें तो उनके समान पहुंच जाएंगे और रेशियो बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं कुछ इस तरह की जो कमियां जो मैंने महसूस की हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ, हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तफाक न रखते हों, वह आपका अधिकार है, लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुभव है, जो प्रयोग है, लंबे समय तक मैं जो देखता करता आ रहा हूं, उसके आधार पर मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक जो सबसे बड़ी समस्या मुझे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ दिखाई देती है दोस्तों, वो भाषा के स्तर की है। अब के जो स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम लोग जब थे उस समय की जो हिंदी भाषा हुआ करती थी स्टूडेंट की, आज उनकी वैसी भाषा नहीं रह गई है। भाषा दोनों ही स्तरों पर मुझे कमजोर दिखाई देती है। एक तो वर्तनी के स्तर पर, लिखने की बहुत सी गलतियां वो करते हैं, बहुत सी गलतियां वो करते हैं, मात्रा की गलतियां करेंगे, शब्द की गलतियां करेंगे। कल मुझे एक मेल मिला, उसमें पर्यंत की जगह लिखा हुआ था प्रयत्न, जीवन प्रयत्न, और साफ समझ में आ रहा था कि उसका अर्थ है जीवन पर्यंत। अब वो जानबूझ करके गलती हुई है या अनजाने में ही गलती हो गई है, या पर्यंत का अर्थ ही प्रयत्न है और प्रयत्न का अर्थ पर्यंत माना जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। तो एक तो लिखने की जो अशुद्धियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और दूसरी सच पूछे तो भाषा में जो एक टटकापन होना चाहिए, जो ताजगी होनी चाहिए, जो प्रभावशीलता होनी चाहिए, वह भी धीरे 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 मध्यम पड़ती जा रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं यही मानूंगा कि हमारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट की जो पढ़ाई हो रही है प्राइमरी लेवल से, वहीं से वह कमजोर होती जा रही है, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के स्कूल जो हैं और थोड़े से भी उच्च संस्थान जगह जगह खुल गए हैं, और जरा भी जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजना शुरू कर देते हैं। अब स्थिति यह होती है कि ये जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो न तो इंग्लिश को बेहतर कर पाते, क्योंकि उनका परिवेश वैसा नहीं है कि उनकी अंग्रेजी बेहतर हो जाए, और न उनकी हिंदी ही वैसी रह जाती। और जब वो सिविल सर्विस में अपीयर होने की स्थिति में आते हैं तो अंग्रेजी में उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन दूसरी चीजें वो नहीं जानते हैं। सब्जेक्ट को अंग्रेजी मीडियम से कंप्लीट कर लेना अलग बात है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट कहलाना और इंग्लिश को उस तरीके से संभाल पाना कि आप कुछ भी लिख सके, फर्राटे से बोल सके, नए आइडियाज दे सके, वो बिल्कुल अलग बात है। और फिर जब वो बाहर का परिवेश देखते हैं तो वहां उनके अंग्रेजी का परिवेश उन्हें दिखाई नहीं देता, फलस्वरूप वो न तो इंग्लिश के रह जाते हैं न हिंदी के रह जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर सतर्कता के साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को काम करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, अब कम से कम हिंदी और जो दूसरे लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब कम से कम उन्हें यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उनके पास हिंदी मीडियम की किताबों का अभाव है या पढ़ने के लिए लिटरेचर अवेलेबल नहीं है और इंग्लिश वालों को बहुत अच्छा लिटरेचर मिल रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम इस शिकायत को या इस कमी को आपको बिल्कुल मान करके चलना चाहिए कि है ही नहीं। जितनी भी अंग्रेजी मीडियम की अच्छी किताबें हैं जो आपके सिविल सर्विस के लिए जरूरी मालूम पड़ती हैं, उनके हिंदी अनुवाद हो चुके हैं। मैगजीन को अगर आप देखें, योजना कुरुक्षेत्र बहुत अच्छी मैगजीन मानी जाती है, तो वो हिंदी में भी आ रही हैं और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं। अगर आप कंपटीशन की मैगजीन्स की बात कर लें तो मुझे लगता है कि एक दो बहुत अच्छी पत्रिकाएं सिविल सर्विस के लिए हिंदी में भी निकल रहे हैं, जिसमें मैं खासकर सिविल सर्विस क्रॉनिकल का नाम लेना चाहूंगा। वो पत्रिका अच्छी है और उसमें जो आर्टिकल निकलते हैं वो काफी तथ्यात्मक होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए होते हैं। तो हम पत्रिका के लेवल पर भी शिकायत करने की स्थिति में नहीं है। जब आप रेडियो न्यूज सुनते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जब आप दूरदर्शन के समाचार सुनते हैं तो वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, दूरदर्शन पर बहुत अच्छे जो टॉपिक्स हैं उन पर हिंदी में भी बहस आती है, बकायदे डिबेट आती है, तो वहां भी हम नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई कमी है। हाँ, न्यूज़पेपर की जहां तक बात है, वो अगर आपकी शिकायत है तो मैं उसे थोड़ा सा स्वीकार करने की स्थिति में हूं। आपके सिलेबस में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हिंदी मीडियम, हिंदी के अखबार आप कह लीजिए कि टच नहीं करते, लेकिन वो आपको जानने हैं। दूसरी चीज मैंने ये भी देखा है कि अंग्रेजी के अखबार किसी भी इश्यू पर, चाहे वो सामान्य सी ही घटना क्यों ना हो, जितने मेहनत के साथ और जितने लॉजिकल तरीके से तथ्यों को लाकर लिखते हैं, हिंदी में उसका भी अभाव देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी में जो लिखा जा रहा है वो बिल्कुल कचरा लिखा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो ये कहना मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी के आर्टिकल थोड़े से बेहतर दिखाई देते हैं सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि इस कमी को कम से कम afis.com पूरा कर रहा है। चार अखबार, अंग्रेजी के चार अखबार ही बेहतर हैं अगर आप सिविल सर्विस की दृष्टि से सोचेंगे तो। हिंदू, जिसका सबसे अधिक नाम है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स। चारों अखबार के जो आर्टिकल्स होते हैं, आप देखिए कि afis आपको प्रोवाइड करता है। आपको जरूरी नहीं कि सारे आर्टिकल पढ़ें, मतलब कि एक अखबार में एक दिन में जितने आर्टिकल छपे हैं वो आप वो सब पढ़ें। इन चारों अखबारों के जो सर्वोत्तम आर्टिकल होते हैं, जिनकी कमी हिंदी अखबार पूरा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सारे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है। और इस आधार पर सच पूछे तो अंग्रेजी अखबारों की जो कमी आप महसूस करते हैं, चाहे वो आर्टिकल के रूप में हो या एडिटोरियल कमेंट के रूप में हो, वह बिल्कुल पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, जहां तक मटेरियल की बात है, आपको फैक्ट्स जानने की बात है, एनालिसिस जानने की बात है, उसकी कमी बिल्कुल भी अब हिंदी वालों के लिए नहीं है। तो फिर हमारे पास कहां कमी कहां है, हम कहां लैग कर रहे हैं? इसके लिए दोस्तों, मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नंबर वन, कि हमें अपने पढ़ने के तौर तरीकों को बहुत अधिक तथ्यात्मक बनाना पड़ेगा, लॉजिकल बनाना पड़ेगा, तार्किक बनाना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास अपनी बात को कहने रखने के लिए तथ्य होने चाहिए। अगर हम अपनी बात को सुपरफिशियल तरीके से कह रहे हैं, ऊपरी ऊपरी तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें नंबर क्यों मिलने चाहिए। हो सकता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा हो, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो केवल एक संभावना व्यक्त कर सकता हूं क्योंकि कॉपी मैंने नहीं देखी है। दूसरी जो बात है वो आंसर राइटिंग की हो जाती है। और सीधी सी बात है कि जो आंसर राइटिंग है हमारे पढ़ने के ढंग पर ही टिका हुआ है। जब हम किसी भी घटना को, किसी भी स्थिति को जब लॉजिकल तरीके से पढ़ते हैं, लॉजिकल तरीके से नोट्स लेते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो हम आंसर राइटिंग करेंगे वह भी लॉजिकल हो जाएगा, अपने आप लॉजिकल हो जाएगा, उसमें कंटेंट होंगे। एग्जामिनर पढ़ने के बाद यह महसूस करेगा कि नहीं, इस स्टूडेंट को इस घटना के बारे में, इस समस्या के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, इसने अच्छी तैयारी की है। और अच्छी तैयारी करना कहीं ना कहीं इस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है, प्रमाणित करता है कि स्टूडेंट लेबोरियस है, ये मेहनत करता है, ये जिम्मेदार स्टूडेंट है। तो ऐसी स्थिति में आपको एग्जामिनर अधिक नंबर देगा ही देगा। वो इस आधार पर आपके नंबर कभी भी नहीं काटेगा दोस्तों कि ये हिंदी मीडियम में लिखा गया है, ये तेलुगु में लिखा गया है, ये असमी में लिखा गया है। नॉट एट ऑल, ऐसा कतई संभव नहीं है। मुझे लगता है कि यदि हम इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें तो डेफिनेटली कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें सफल होने से रोक सके। तो दोस्तों, मैंने अपनी बातें कुछ अपने ढंग से रखने की कोशिश की है, कुछ अपने अनुभव के आधार पर, कुछ जो मुझे तथ्य मिले हैं उनके आधार पर। आप मेरे तथ्यों पर विचार करें और विचार करने के बाद अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ बातें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं तो फिर केवल सोचे नहीं बल्कि उन्हें अमल में लाना शुरू कर दें। तो मित्रों, इस विषय पर आज इस बात को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: आशु जयपुर से, आदित्य कुमार पटना से, चंद्रशेखर यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, रुपिंदर कौर विर्क, प्रशांत मवानी और वंदना कुशवाहा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।